गुणमय रूप की उपासना। उत्तर भारत के नाथ शैव मत का झुकाव निर्गुण उपासना की ओर था। भक्ति इस साधना में अपरिचित वस्तु है। तुलसीदास ने गोरख को भक्ति का विरोधी बताया था। इस संप्रदाय के साधक वर्ण व्यवस्था और गृहस्थ के माया मुग्ध जीवन पर आक्रमण मूलक उक्तियां कह गए हैं। जो लोग हठ योग की साधना नहीं करते, गृहस्थी की चक्की में पिस रहे हैं, कामिनी कांचन के भुलावे में पड़े हुए वे उनकी दया के पात्र हैं, वे 84 लाख योनियों में भटकने वाले संसार कीट हैं, वे दयनीय हैं। किंतु वैष्णव साधकों में एक विशेष प्रकार की मृदुता रही है। उन्होंने किसी को भी कटु बात नहीं कही। भक्ति उनकी प्रेरक शक्ति थी और अहिंसा उनका मूल मंत्र। मन, वचन और कर्म से अहिंसक रहना उनकी साधना का ही प्रथम प्रक्रिया थी। इन वैष्णवों के दो रूप हैं, एक तो निर्गुण मार्गी, दूसरे सगुण मार्गी। सामाजिक बातों में इनमें मतभेद है। इसी बात में वे एक दूसरे पर आक्रमण भी करते हैं, परंतु धर्म साधना में दोनों का प्रेरक शक्ति भक्ति ही है। दोनों के प्रधान भेद रूपोपासना के विषय में है। दूसरे श्रेणी के अर्थात सगुण मार्गी भक्त ठोस रूप के उपासक हैं। सूरदास कहते हैं, सुंदर मुख की बली बली जाऊं, लावन निधि गुण निधि शोभा निधि, निरख निरख जीवित सब गाऊं। अंग अंग प्रति अमित माधुरी, प्रगटित रस रुचि ठाऊं ठाऊं, तामे मृद मुस्कानी मनोहर, न्याय कहत कवि मोहन नाऊं। नैन सैन दय दय जब बोलत, तापर हौ बिन मोल बिकाऊं, सूरदास प्रभु मदन मोहन छवि, यह शोभा उपमा नहीं पाऊं। सूरदास के प्रभु की इस मदन मोहन छवि की उपमा सचमुच संसार में नहीं है। भक्त केवल उस कुटिल बिथुरे कच्छ वाले मुख के ऊपर सौंदर्य पर ही इतना अधिक भाव मुग्ध हुआ है, यह बात संसार की साधना में अद्वितीय है। यह भाव एकमात्र भारतीय वैष्णव कवियों की साधना में सर्वप्रथम और शायद सबसे अधिक अंत में अभिव्यक्त हुआ है। वैष्णव कवियों को दो श्रेणियों में विभक्त किया जा सकता है। एक में वे भक्त हैं जो भक्त या साधक पहले हैं, कवि बाद में। सूरदास और तुलसीदास प्रथम श्रेणी में आते हैं। देव, बिहारी और मतीराम दूसरी में। सूरदास ऊपरी लिखित भजन में कहते हैं कि इस लावण्य निधि शोभा निधि गुण निधि गोपाल को कवि मोहन कहते हैं। यह बात उचित ही है, पर स्वयं सूरदास कवि की उक्ति तक ही आकर नहीं रुक गए। वे साधक हैं, वे आगे बढ़ते हैं। नैन सैन दय दय जब बोलत, तापर हौ बिन मोल बिकाऊं। कवि और साधक वैष्णव यही आकर अलग हो जाते हैं। कवि इसी रूपातीत को एक नाम देकर, एक मोहक आख्या देकर अपने कवि स्वभाव के औचित्य की सीमा तक जाकर रुक जाता है। साधक आगे बढ़ता है और उत्सर्ग कर देता है अपने को उस मनोहारी सैन पर, उस रमणीय बोल पर, सो भी बिना मोल। वैष्णव कवियों के इन दो रूपों को न समझने के कारण आज का समालोचक नाना प्रकार की कटुक्तियों से साहित्यिक वातावरण को क्षुब्ध कर रहा है। आज के कार्य बहुल कार्य में मनुष्य की ललित भावनाएं खंड भाव से प्रकट हो रही हैं। किसी को इस समय एक समग्र साहित्य को न तो समझने की फुर्सत है और न रचना करने की। काव्य में यह लिरिक का युग है, कथा में छोटी कहानी का और चित्र में विच्छिन्न चित्रों का। पर इसलिए इन विच्छिन्न चेष्टाओं को विच्छिन्न भाव से देखना तो वास्तविक देखना नहीं है। इस युग की काव्य चेष्टा को समझने के लिए अतीत युग की काव्य चेष्टा का ज्ञान आवश्यक है। इस देश का साहित्य समझने के लिए देशांतर के साहित्य को समझने की जरूरत है। विच्छिन्न काव्य चेष्टा के वर्तमान युग को समझने के लिए देशांतर और कालांतर नितांत आवश्यक है। पर प्राचीन युग के साहित्य को समझने के लिए केवल प्राचीनतर साहित्य का ही आवश्यक नहीं, आधुनिक मनोवृत्ति का अध्ययन भी आवश्यक है। हमें अगर सूरदास या नंददास को समझना है तो उसका प्रधान रूप हमारी आधुनिक मनोवृत्ति है। इस मनोवृत्ति से उस युग की मनोवृत्ति को ठीक मेल नहीं भी हो सकता। आज सौंदर्य और लालित्य का मानदंड बदल गया है। इस मानदंड से प्राचीन लालित्य को समझना सब समय सुलभ नहीं हो सकता। इस मनोवृत्ति को लेकर अगर प्राचीन कवियों का अध्ययन किया जाएगा तो अनर्थ ही संभावना है। उपनिषद के एक मंत्र में कहा गया है, आत्मा को जानकर परमात्मा को जानना चाहिए। इस कथन को बदलकर कहा जा सकता है कि अभिनव मनोवृत्ति को समझकर प्राचीन मनोवृत्ति को समझना चाहिए। मिस्टर रोसेन कोप ने सन 1914 ईस्वी में लेक्चरर ऑफ एसेंथेटिक लंदन यूनिवर्सिटी कहा था कि सन 1860 ईस्वी में इंग्लैंड के सर्वसाधारण का चित्त परियों के रम्य लोक से हटकर सरल सहज कल्पना और मानवता की ओर अग्रसर हुआ। इस वक्तव्य को कुछ बदलकर भारतवर्ष के बारे में भी कहा जा सकता है कि कम से कम इस शताब्दी में भारतीय चित्त भी कृष्ण और राधिका के विचार ललित और भाव मधुर गोलोक से उतरकर सहज मानव गृह की ओर गया है। वस्तुतः आज भारतवर्ष का चित्त भी संसार के अन्य देशों की तरह एक महापरिवर्तन की उर्मी प्रत्युर्मी में से आंदोलित हो उठा है। एक ही साथ इस देश में इतने तरह की विचारधाराएं आ टकराई हैं कि उनके आवर्त दुर्धर तरंगराजी में भारतीय चित्त कुछ हतबुद्धि सा हो गया है। यूरोप में 14वीं शताब्दी में ही मानव चित्त स्वर्ग से हटकर मर्त्य की ओर अग्रसर हो गया था। मर्त्य की ओर आकर भी वह एक बार विस्मृत परलोकी की ओर धावित हुआ था। बीच में उसे तैयार होने का पर्याप्त अवसर मिला था, परंतु यह सौभाग्य भारतवर्ष को प्राप्त न हो सका। एक ही साथ इतने वादों की बाढ़ यहाँ आ गई कि आज का नव शिक्षित समालोचक चकित थकित की भांति कर्तव्य मूर हो उठा है। भारतीय समालोचक एक बार टेनिसन जैसे धार्मिक भावापन्न कवि की कविता से मुग्ध होकर वैष्णव कवियों की ओर प्रश्न भरी दृष्टि से देखता है, एक बार किट्स की अस्तमित तत्वानंदमयी उक्तियों से चकित होकर देव और बिहारी से उस भाव को खोजता है, एक बार बायरन के तत्व गंभीर आख्यान काव्यों का आनंद लेकर कबीर और दादू की ओर दौड़ता है, एक बार ईसाई भक्तों का गलदश्रु भावुकता से विमुक्त होकर रसखान और घन आनंद की ओर ताकता है और अंत में सर्वत्र निराश होकर क्षुब्ध हो उठता है। नवीन आलोचक इस महाविकट युग के सबसे अधिक रूप के भीतर अरूप की सत्ता खोजने में अपना समय नष्ट करता है, पर हाय, नाना अभिनव वादों के तरंगाघात से जर्जर उसकी चित्त तरी अधिकाधिक भ्रांत उठती है। एक बार इंग्लैंड में ग्रीक नाटकों के विरुद्ध प्रबल आंदोलन हुआ था। कहा गया था कि वह असमीचीन और अस्वाभाविक है, अमार्जित और करुचिपूर्ण है, पर शीघ्र ही इस भूल का सुधार हुआ। अंग्रेज मनीषियों ने आलोचनात्मक प्रबंधों से अंग्रेज मस्तक को उस सौंदर्य का अधिकारी बनाया। ग्रीक नाटकों को ह्यूमनिस्टिक या मानवीय रस मूलक कहा गया था। कहना न होगा कि आज का यूरोपीय साहित्य कम मानवीय नहीं है, पर ग्रीकों के मानव आदर्श और वर्तमान युग के मानव आदर्श एक ही नहीं है। ब्रजभाषा कवियों की रूपोपासना को मानवीय कहा जा सकता है। ब्रज का कवि कभी कृष्ण या राधिका के रूप में अमानव रस का आरोप नहीं करता। वह केवल एक बार स्वीकार कर लेता है कि उसका प्रतिपाद्य अतिमानव या सुपर ह्यूमन है। पर इस स्वीकारोक्ति से उसके रसबोध में कभी कमी नहीं आती। वह समझता, वह ईसा मसीह के भावुक भक्तों की भांति सदा अपने प्रभु को दैवीय प्रतीक या दैवीय मध्यस्थ नहीं समझता। कहे तो कह सकते हैं कि ब्रज का कवि भी मानवीय है, पर ग्रीक कवि आज के नाटककार और ब्रज भाषा के कवि की मानवता की कल्पना में आकाश पताल का अंतर है। दोनों तीनों तीन चीजें हैं, एकदम अलग अलग। ग्रीक नाटकों और मूर्तियों के साथ प्राचीन ग्रीक की रीति नीति आचार व्यवहार जटिल भाव से जड़ित हैं। ग्रीक आर्ट केवल आर्ट के लिए नहीं था, वह ग्रीकों का जीवन था, ग्रीकों का उत्सव था, ग्रीकों का सर्वस्व था। एक अमेरिकन लेखक ने लिखा है कि हम आजकल नाटक को जिस दूरस्थ साक्षी की भांति देखते हैं, ग्रीक इस तरह उसे नहीं देखते। ग्रीक दर्शक अभिनेताओं से इतने पृथक नहीं होते थे। एक बार कविवर रविंद्रनाथ ने नाट्य मंच की आलोचना के प्रसंग में कहा था कि वे जापानी क्लासिकल नाटकों की एक विशेषता देखकर आनंदित हुए थे। अभिनेता सजकर दर्शकों के बीचों बीच से होकर रंगमंच की ओर अग्रसर होते थे। यह बात मानो यह घोषित कर रही थी कि अभिनेता दर्शकों से दूर की चीज नहीं है। ग्रीक नाटकों में शाश्वत ऐसा नहीं होता था, फिर ग्रीक दर्शक निश्चय ही उसे अपने जीवन का एक स्वाभाविक अंग समझता था। बौद्ध या हिंदू देवताओं की मूर्तियों का अपूर्व कारुकौशल उस प्रकार का हो ही नहीं सकता। शिल्पकार उसे अपने तन मन और जीवन से न रचता। ब्रज भाषा के कृष्ण की सारी लीला भी इसी तन मन और जीवन से ईंट चूने गारे से बनी है। कवि ने अपनी मनुष्यता का सुंदर से सुंदर उपयोग उस भाव मधुर रुचिर छवि की रचना में किया। वह एकांत दूर से निरीक्षमाण चित्र नहीं है, वह अंतर की प्रेम स्रोत स्विनी का ठोस जमाहट है। वहीं आकर उसकी सारी धारा सार्थक होकर रूपांतरित हो गई है। वह किसी तत्ववाद या व्याख्या की अपेक्षा नहीं रखती, वह अपने आप में पूर्ण है। पर आज का नाटक या काव्य या शिल्प न तो उस जीवनमय किंतु नित्य नूतन ग्रीक मानवीयता के साथ मेल रखता है और न इस मनोमय किंतु परिवर्तनातीत भाव मधुर वैष्णव मानवीयता का सादृश्य रखता है। वस्तुतः आज की ललित कला का कोई एक रूप स्थित नहीं किया जा सकता। बहुतत्व धर्मा, नाना मुखी, साक्षी सापेक्षा इस कला का रूप भविष्य ही निर्णय करेगा। इसलिए जब सूरदास रूपातीत को मोहन कहना कवि के लिए न्याय बताते हैं, तो उनकी बात सहज ही समझ में आ जाती है। यह रूप अन्य रूपों की भांति आगे बढ़ने का मार्ग नहीं दिखाता, यहीं आकर सारी गति रुद्ध हो जाती है, सारी वृत्तियां मुग्ध हो जाती हैं, सारी चेष्टाएं व्यर्थता के रूप में सार्थक हो जाती हैं। कवि की सारी सार्थकता इस व्यर्थता में ही है। यह रूप मोहन है, मोहने वाला है, अर्थात जहाँ जाकर सारी मानसिक वृत्तियां शिथिल हो जाती हैं। तुलसीदास एक जगह कहते हैं, सखी रघुनाथ रूप निहारू, सरद विधु रवि सुवन मनसिज मान भंजन हारू, श्याम सुभग शरीर जनुमन काम पुर निहारू, चारु चंदन मनहु मरकत शिखर लसत निहारू, रुचिर उर उपवीत राजत पदिक गज मनिहारू, मनहु सुर धुनि नखत गण बिच तिमिर भंजन हारू, विगत पीत दुकुल दामिनी दूति विनंदिनी हारू, बदन सुषमा मदन सदन शोभित मदन मोहिनी हारू, सकल अंग अनूप नहीं को सुकवि बर निन हारू, दास तुलसी निरख तही सुख लहत निरखही हारू। यहाँ भी कवि के उसी रूप का उल्लेख है। ऐसा कोई कवि नहीं है जो उस सकल अंग अनूप का वर्णन कर सके। उसके लिए एक ही शब्द उपयुक्त है और इसका उपयोग वह तब करता है जब उसकी उपमाएं समाप्त हो जाती हैं, उत्प्रेक्षाएं रुद्ध वेग हो पड़ती हैं, रूपक विगत रिद्धि हो उठते हैं, उस समय वह एक ही बात कहता है, बदन सुषमा सदन शोभित मन मदन मोहन हारू, और यही आकर सारा कवित्व पर्यवसित हो जाता है। जिसका रूप एक बार कवि को भाव मदिर कर देता है, उस मदन उसे मदन कहा जाता है। मदन की यह विशेषता है कि उससे मोह का आवेश बढ़ता है, नई नई कल्पनाएं, नए नए रूपक दर्शक को विह्वल कर देते हैं। कृष्ण के अतिरिक्त अन्य सांसारिकों के रूप में मदन का भाव है, वह मादक होता है, उससे जुड़ता जड़ता आती है, पर कृष्ण का रूप मदन मोहन है, वह मादकता को भी मोहित कर देता है। उस मोह का रूप तमह प्राकृतिक नहीं है, वह सत्व प्राकृतिक है। वैष्णव कवि की वाणी का सारा ऐश्वर्य इस मदन मोहिनी हारू छवि तक आकर हत चेष्ट हो जाता है। साधक एक कदम और आगे बढ़ता है। यह बिना किसी कारण, बिना किसी लाभ के, बिना किसी उद्देश्य के अपने को उस पर निछावर कर देता है, अपनी सत्ता उसी में विलीन कर देता है। यही उसका सुख है, यह उसकी चरम आराधना है। दास तुलसी निरख तही सुख लहत निरखनी हारू, देखने वाला देखने में ही सुख पाता है, केवल देखने में। कविवर रविंद्र एक स्थान पर लिखते हैं कि जो लोग अनंत की साधना करते हैं, जो सत्य की उपलब्धि करना चाहते हैं, उन्हें बार बार यह बात सोचनी होती है कि जो कुछ देख और जान रहे हैं वही चरम सत्य नहीं है, स्वतंत्र नहीं है। किसी भी क्षण में वह अपने आप को पूर्ण रूप से प्रकाशित नहीं कर सकता। यदि वे ऐसा करते होते तो सभी स्वयंभू स्व प्रकाश होकर स्थित ही रहते। ये जो अंतहीन स्थिति के द्वारा अंतहीन गति का निर्देश करते हैं, वही हमारे चित्त का चरम आश्रय और चरम आनंद है। अतएव आध्यात्मिक साधना कभी रूप की साधना नहीं हो सकती। वह सारे रूप के भीतर से चंचल रूप के बंधन को अतिक्रम करके ध्रुव सत्य की ओर चलने की चेष्टा करती है। कोई भी इंद्रिय गोचर वस्तु अपने को ही चरम समझने का भान करती है। साधक उस भान के आवरण को भेद कर ही परम पदार्थ को देखना चाहता है। यदि यह नाम रूप का आवरण चिरंतर होता तो वह भेद न कर सकता। यदि ये अविश्रांत भाव से नित्य प्रवाहमान होकर अपनी सीमा को आप ही न तोड़ते चलते तो इन्हें ही सत्य समझकर हम निश्चय हो बैठ जाते। तब विज्ञान और तत्व ज्ञान इन सारे और प्रत्यक्ष सत्यों के भीषण श्रृंखला में बंद कर मूक और मूर्छित हो रहते, इनके पीछे और कुछ भी न देख पाते। किंतु ये सारे खंड वस्तु समूह केवल चल ही रहे हैं, कतार बांध कर खड़े नहीं हो गए। इसलिए हम अखंड सत्य का, अक्षय पुरुष का संधान पाते हैं। इस लंबे उद्धरण को उद्धृत करने का कारण यह है कि इसमें रूप के बंधनात्मक स्वरूप से उतरकर बाधात्मक रूप का प्रकट होने की सुंदर व्याख्या की गई है। रूप बंधन है, पर यह बंधन रूपातीत को समझाने में सहायक है। रूप चल है, पर सनातन की ओर इशारा करता है। रूप सीमा है, पर उसमें असीम की भाव व्यंजना है। यही रूप जब आध्यात्मिक साधना का विषय हो जाता है तो बंधन से नीचे उतरकर बाधा का रूप धारण करता है। फिर वह उस राजोद्यान के सिंह द्वार के समान गंतव्य की ओर इशारा न कर अपने आप को एक विषय बाध के रूप में उपस्थित करता है। एक सुप्रसिद्ध कला मर्मज्ञ ने कहा है कि कला जब देवी देवताओं की उपासना में नियोजित होती है तो उसमें एक धृष्टता आ जाती है, उसमें प्रतिभा का स्थान नहीं रह जाता, क्योंकि प्रतिभा नित्य नूतन रूप चाहती है। देवी देवताओं की मूर्तियों की एक ही कल्पना सदा के लिए स्थित हो जाती है। रविन्द्रनाथ स्वयं कहते हैं, कल्पना जब रुक कर एक ही रूप में एकांत भाव से देह धारण करती है तब वह अपने उसी रूप को दिखाती है, रूप के अंत सत्य को नहीं। इसलिए विश्व जगत के विचित्र पौर चिर प्रवाहित रूप में चिर परिवर्तनशील अंतहीन प्रकाश में ही हम अनंत के आनंद को मूर्तिमान देखते हैं।